नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का किया आग्रह। जंगल व पर्यावरण से जुड़े मानकों को महत्व देने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों को डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश के अनेक भागों में अगले दो दिन भारी वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान को जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनघड़िया से भेंट की और राज्य की वित्तीय स्थिति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हिमाचल को प्राकृतिक आपदाओं ने बुरी तरह प्रभावित किया है और जानमाल को भारी क्षति हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान की न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तय करने की मांग की। उन्होंने जंगल और पर्यावरण से जुड़े मानकों को भी अधिक महत्व देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों द्वारा देश को दी जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं की एवज में 50,000 करोड़ रुपये का एक अलग ग्रीन फंड सृजित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद में आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में किए गए सुधारों की बात कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी।
ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीएसटी सुधारों के तहत 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी प्रकार 1200 सीसी से कम की पेट्रोल और 1500 सीसी से कम की डीजल कार जिनकी लंबाई 4 मीटर से अधिक ना हो उन पर भी जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा 35 ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी शून्य किया गया है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य सरकारों द्वारा देश में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में जेपी नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण में आने वाली मुख्य चुनौतियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य, स्थानीय निकायों और समुदायों, विशेषकर इस उच्च जोखिम वाली अवधि में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए रोकथाम व नियंत्रक उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को आने वाले महीनों में सजग रहने को कहा। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा केंद्रों सहित सभी अस्पतालों को पर्याप्त औषधि, डायग्नोस्टिक बिस्तरों और मच्छरों से मुक्त परिसर सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति लाइनों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज एक बैठक में उन्होंने पेयजल योजनाओं की बहाली में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राजेश धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र में भारी वर्षा से प्रभावित सभी 59 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को आंशिक या पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में जुब्बल उपमंडल की कुड्डू पंचायत में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जुब्बल क्षेत्र में सड़कों को 57 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब सेब सीजन को देखते हुए सभी संपर्क मार्गों को बहाल कर दिया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें नियमानुसार राहत प्रदान की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जुब्बल के 8 केंद्रों में सेब खरीदा जा रहा है और अब तक 11,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा चुकी है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में हुई आपदा के बाद प्रभावितों को राहत पहुंचाने को लेकर गंभीर नहीं है और मॉनसून से पहले भी सरकार ने तैयारियों की कोई समीक्षा नहीं की। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आपदा से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत व बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राज्य सरकार इसके लिए पूर्व भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों की मदद कर रहे हैं और देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी ने राहत सामग्री भेजी है।
प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब आपदा लगातार पिछले 3 वर्षों से कहर ढा रही है प्रदेश में, हमारी तैयारियां उसके अनुरूप होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बारिश के मौसम से पहले कि आपदा आ सकती है उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो। अब हो क्या रहा है, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। राज्य लोक सेवा आयोग ने 13 सितंबर को सहायक जिला न्यायवादी के पदों के लिए प्रस्तावित छंटनी परीक्षा को खराब मौसम को देखते हुए स्थगित कर दिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि अब ये परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 17 तारीख से देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित अनेक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सेवा और स्वच्छता जैसे मूलभूत मूल्यों को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता के कारण ही भारत अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की वर्षा का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग ने 12 से 15 सितंबर तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि अगले 2 दिन कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है।
12 सितंबर तक अधिकांश स्थानों पर कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहेंगे, बहुत ही हल्के स्तर की बारिश 1-2 स्थानों पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन 13 सितंबर से ही एक बार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है 13 सितंबर को हमें कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के साथ साथ सिरमौर जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट हमने इन सभी जिलों के लिए 13 सितंबर के लिए जारी किया हुआ है। और 13, 14 और 15 सितंबर को थंडर स्टॉर्म्स एक्टिविटी जो है वो हमें कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिले में एक आध स्थानों पर देखने को मिलेगी।
उधर कुल्लू जिले के बंजार और मनाली उपमंडलों में प्रशासन ने कल 12 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी पर आपदा के समय भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है और इससे पहले किसी ने भी प्रदेश को इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया है। सन्नी शुक्ला ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के भाजपा सांसदों को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का किया आग्रह। जंगल व पर्यावरण से जुड़े मानकों को महत्व देने की मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों को डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और प्रदेश के अनेक भागों में अगले दो दिन भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।